ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत 2700 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट INA में एक विशेष खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई। बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF कल हाफ मैराथन में भाग लेगा। एम्स में चल रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह 2024 का समापन हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत अभी तक 2700 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले 76 स्थलों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं पर लगभग 17.5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये जानकारी आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राव ने दी। श्री रॉय ने बताया कि सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर में अभियान चलाया हुआ है जो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की 523 टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं और मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत की गई कार्रवाई के जारी किए गए आंकड़ों को भाजपा ने गुमराह करने वाला बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मंत्री गोपाल रॉय द्वारा जारी किए गए आंकड़े झूठे हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि बीते 12 दिनों के अंदर दिल्ली में 2700 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण करना असंभव है और ये केवल खानापूर्ति करना दर्शाता है। भाजपा अध्यक्ष ने मंत्री गोपाल रॉय से इन आंकड़ों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा शहर में शुरू किए गए पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब श्रेणी में रखा है। कल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 292 दर्ज किया है। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक माना जाता है, 101 से 200 के बीच का AQI सामान्य माना जाता है, 201 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है और 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब माना जाता है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आज भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की लंबित 12 रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र बुलाने और कैग की रिपोर्टों को सदन में पेश करने की मांग की। मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 के बाद सरकार द्वारा कैग की किसी भी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित है जो सीधे तौर पर जनता के हितों से जुड़ी हुई है।
संवैधानिक संकट दिल्ली में उत्पन्न हुआ है कि 2017 के बाद CAG की रिपोर्ट जितनी रिपोर्ट्स आई हैं सबको अंडरग्राउंड कर दिया, सबको सप्रेस कर दिया, दबा दिया गया और सदन के पटल पर नहीं लाया गया, जो पूरी तरह से एक तरह का संगीन अपराध है। और आज हम 12 CAG रिपोर्ट टेबल करने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमने पत्र भी लिखा है, 26 और 27 सितंबर के सदन में भी हमने मांग उठाई थी लेकिन हमें मार्शल आउट किया गया और सरकार जानबूझ के इस मामले पर जो है वो रिपोर्ट को दबा रही है।
दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह पिदोड़ी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की। श्री पिदोड़ी ने बताया कि उनके क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 200 करोड़ रूपये लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान सड़क, नाले, पार्क और सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए सांसद पिदोड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट INA में एक विशेष खादी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये प्रदर्शनी राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को बढ़ावा देने के साथ साथ खादी कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए लगाई गई है। इसका उद्घाटन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जितन राम मांझी ने कल किया था। सभा को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने सभी नागरिकों से खादी और स्थानीय उत्पादों की अधिक से अधिक खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का व्यापक उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और पारंपरिक शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस प्रदर्शनी पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट।
खादी प्रदर्शनी देश भर के कारीगरों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रही है। 14 दिवसीय प्रदर्शनी में दिल्ली, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल और जम्मू सहित विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 55 खादी संस्थानों और 112 ग्राम उद्योग इकाइयों के 157 स्टॉल शामिल है। साड़ियाँ, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद, अचार, मसाले, साबुन, शैम्पू और शहद जैसे खादी और ग्रामीण उत्पाद अब तक सबसे लोकप्रिय साबित हुए हैं। वहीं आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कारीगर और शिल्पकार अपनी विविध खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद श्रृंखला का सजीव प्रदर्शन दे रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जो ग्रामीण कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें अपने शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करके भारत के स्वदेशी शिल्प कौशल को संरक्षित करने में योगदान दे रहा है। खादी प्रदर्शनी इस महीने के अंत तक चलेगी। आदर्श कुमार, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
रेलवे सुरक्षा बल RPF कल दिल्ली में हाफ मैराथन में भाग लेगा। इसका उद्देश्य बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना है।
रेल मंत्रालय ने बताया है कि RPF के ध्येय वाक्य हमारा मिशन ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकना के अंतर्गत समूचे रेल नेटवर्क में बाल तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। RPF की इस पहल का उद्देश्य सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है। इस कार्यक्रम में 26 RPF सदस्य हाफ मैराथन में भाग लेंगे, जो इस अभियान के प्रति RPF की ताकत, एकता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि जन भागीदारी बढ़ाने के लिए RPF बैंड रेल भवन के पास लाइव प्रस्तुति देगा, जिससे सहायक और संवादात्मक वातावरण तैयार होगा। RPF ने लोगों से इस पहल का समर्थन करने और बाल तस्करी के खिलाफ कदम उठाने का आह्वान किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल आयोजित होने वाली वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल की सेवाएं कल एयरपोर्ट और ग्रीन लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर तड़के 3:15 से शुरू होंगी। हालांकि इस दौरान केवल दौड़ के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों को ही रेल यात्रा करने की अनुमति होगी। सुबह 6 से मेट्रो रेल अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही परिचालित की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए JLN स्टेडियम, जोरबाग, जनपद, जंगपुरा और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। मैराथन दौड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम DTC ने भी विभिन्न मार्गों पर यातायात के परिवर्तन को लेकर परामर्श जारी किया है। DTC ने बताया है कि कल तड़के 5:45 से सुबह 11 तक शहर के कई मार्गों पर यातायात को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित मार्गों में लोधी रोड, रिंग रोड, डॉ जाकिर हुसैन मार्ग, कर्तव्य पथ, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड सहित कई अन्य मार्ग शामिल हैं। 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU WTSA नई दिल्ली में जारी है। इसके अलावा AI के एक हिस्से के रूप में गुड इम्पैक्ट इंडिया के लिए रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज आयोजित किया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ प्रतियोगिता में 11 राज्यों की 51 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का विषय आपदा प्रबंधन था। प्रतिभागियों की पहली चुनौती एक रोबोटिक्स प्रणाली का निर्माण करना था जो भूकंप पीड़ितों की जान बचा सके। वास्तविक भूकंप की नकल करने के लिए एक सिमुलेशन अथवा मूल्यांकन चलाया गया, जिसमें लोगों की जान बचाने तथा पीड़ितों को आश्रय स्थल और अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए रोबोट को प्रोग्राम किया गया। रोबोटिक्स मुकाबले के जूनियर और सीनियर श्रेणियों के विजेता अगले साल जुलाई में होने वाली AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स में व्यवहारिक समाधान प्रदर्शित करना था। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुराने परिसर स्थित एक घर में आज सुबह आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। दमकल विभाग ने बताया है कि तड़के 3:18 पर विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद अग्निशमन की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और टीम ने लगभग 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में चल रहा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोह 2024 का आज समापन हो गया। आयुर्वेद में अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन में विश्वभर से विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी ने कहा है कि इस सम्मेलन ने विश्वभर के विशेषज्ञों को एक साथ लाने का काम किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 15 वैज्ञानिक सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें 400 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण करने की दिशा में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना था। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ नेहा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश और मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वैश्विक परिदृश्य में सशस्त्र बल भविष्य के लिए मजबूत और लचीले बने रहें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध क्षेत्र का दायरा समुद्र, वायु और पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़ चुका है। श्री सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के लिए अब साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध पारंपरिक युद्ध अभियानों की तरह महत्वपूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एआई में पूर्वानुमान करने और निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है।
Artificial Intelligence (AI) has the potential to revolutionize military operations from predictive analytics to autonomous decision-making systems. You will be the leaders who will have to decide where and how to leverage this technology and whether you will deploy this technology to enhance situational awareness or to optimize resource allocation or to improve decision-making in real time.
इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक रक्षा परिदृश्य में तकनीक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में सामरिक विशेषज्ञों की संख्या अधिक होनी चाहिए। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने आज केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित गेहूं की 13 नई किस्मों के बीजों का वितरण शुरू किया है। इसके लिए देश भर में 22,000 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। इन नई किस्मों में बीजों में अधिक रोग प्रतिरोधक और उत्पादन क्षमता है। गेहूं की स्वीकृत किस्मों में जौ की DWRV-137 किस्म भी शामिल है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत 2,700 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट INA में एक विशेष खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई। बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF कल हाफ मैराथन में भाग लेगा। एम्स में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरू 2024 का समापन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।